السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89۔ اور سامعین، اب وہ ٹاپکس جس پر آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ہوگا صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد عالمی رد عمل اور جاری احتجاجی مظاہرے۔ دوسرا موضوع ہے چین کا پاکستان میں اپنے شہریوں پر ممکنہ دہشت گرد حملوں کا انتباہ۔ اور ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہوگا پاکستان کا اپنی حراست میں موجود مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو سے ان کی بیوی اور والدہ کو 25 دسمبر کو ملاقات کی اجازت۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم چلتے ہیں، اور جیسے کہ سامعین آپ کو معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے دوسرے دن بھی فلسطینی علاقوں اور دنیا کے جو دیگر شہر ہیں ان میں موجود امریکی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کا سلسلہ جو ہے اطلاعات کے مطابق جاری رہا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی احتجاجیوں کے درمیان جھڑپوں میں کہا جا رہا ہے کہ کئی درجن افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ہے کہ آج مسجد الاقصی جو ہے وہاں پر نماز جمعہ کے موقع پر حالات جو ہیں وہ مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی نماز جمعہ کے بعد مظاہرے ہوئے ہیں، اس حوالے سے اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن دوسری جانب کل وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے سارا سینڈرز، انہوں نے کہا ہے اپنے جو وہاں پر موجود صحافی تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یروشلم سے متعلق اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پہلے کی طرح ہی امن عمل سے منسلک ہے، اور وہ فریقین پر مذاکرات اور بات چیت کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے تمام جو فریقین ہیں وہ آخر کار ایک امن معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ان کے بقول امریکہ بھی سب سے بڑھ کر یہی چاہتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے یہاں امریکہ سے آپ کے جانے پہچانے معروف تجزیہ نگار عرفان ملک صاحب۔ ہمیں جوائن کریں گے ریپبلکن پارٹی کے ساجد تارڑ صاحب، ہمارے ساتھ ہوں گے انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ، پیرس یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عطا محمد صاحب، اور پاکستان سے کچھ 15 منٹ بعد ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب۔ تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں عرفان ملک صاحب، ہمارے ساتھ ہیں۔ عرفان ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ابھی تک جو رد عمل ہمیں سامنے آ رہا ہے، نہ صرف مسلم جو رہنما ہیں ان کی جانب سے، بلکہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، بلکہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں، انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کے اس ڈیسیجن جو ہے اس کی مذمت کی ہے، اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس ڈیسیجن کے، آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
شناز، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس ڈیسیجن پہ کہ یہ کوئی 95 میں یو ایس کانگریس نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ایکسیپٹ کیا تھا، تو یہ کوئی نئی کیپٹل ایکسیپٹ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ایک پرانی بات تھی۔ صرف مسئلہ جو تھا وہ ایمبیسی تل اویو میں تھی، جیروسلم میں نہیں تھی۔ تو اب جو صدر ٹرمپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ یہ ہے کہ ایمبیسی کو موو کرنا، انہوں نے یہ جو ڈیسیجن لیا، ساتھ ہی انہوں نے ایک ویور بھی اس میں کر دیا کہ یہ ایمبیسی امیڈیٹلی موو نہیں ہوگی، کچھ سال بعد موو ہوگی۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا جو انہوں نے اپنے بیس اور جو ایونجیلیکل امریکنز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا پریشر اور پھر اسرائیل گورنمنٹ کا بھی پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ تو اس ڈیسیجن کے آنے سے کوئی مٹیریلی کوئی اتنی چیزیں بدلتی نہیں ہیں، سمبولکلی کافی بڑی بات ہے، اور جو آئی تھنک جو چیز کچھ ڈفرینٹ ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ جو عرب ممالک اور جو امریکن مسلمز ہیں और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज भी जो इस डिसीजन के नेगेटिव हैं, उनको चाहिए था कि प्रेसिडेंट ट्रंप से कहें कि आपने ये डिसीजन तो लेना है, पर इस डिसीजन के जो वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक नेगोशिएटर हूं और मुझे पता है कि नेगोशिएट कैसे करना है, तो इसमें आप कुछ इसराइल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट भी करें। वो बेशक सेटलमेंट है, वो कोई ह्यूमन राइट्स है, वो कोई और इशू है, कि अगर आप उनको ये प्लेट पे दे रहे हैं तो उनसे कुछ लें भी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जी उन्होंने ये जो डिसीजन है वो इसराइल गवर्नमेंट को प्लेट पे रख के दे दिया है, उसके बरक्स उनसे कोई रियायतें या कोई उनसे कोई और अपनी जो डिमांड्स हैं, ये जो पीस की बात आप कर रही हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं की। जो कल आपने जो अभी जिक्र किया
व्हाइट हाउस,
तो उन्होंने क्या कहा है कि हम दबाव डालेंगे, ये तो नहीं कहा कि इसराइल पे दबाव डालेंगे। वो तो कह रहे दबाव डालेंगे, वो दबाव किस पे डालेंगे, पैलेस्टाइन पे डालेंगे, अरब पे डालेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो अरब ममालिक हैं इस वक्त, सऊदी, इजिप्ट और ये जो सब हैं, वो इतने अमेरिकन पॉलिसी के साथ अलाइंड हैं अपनी इंटरेस्ट की वजह से कि उनको ये जो ग्लोबल बड़े इश्यूज हैं उसकी इतनी फिक्र नहीं है। और मैं लास्ट एक बात एक और कर दूं कि जी इसका जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं हमारे पे बहुत असर है, इन द सेंस के भी डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, कि अल्लाह रहम करे ये जो आपने कहा आज जो जो मुजाहरे हो रहे हैं और इस टाइप का, कि कोई पागल शख्स कोई आके कोई उल्टी हरकत कर दे अमेरिका में या यूरोप में, तो उसका हमारे पे बड़ा नेगेटिव असर होता है।
जी आप हमारे साथ रहिए। साजिद तारर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा पेरिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अता मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद डॉक्टर अता मोहम्मद साहब। लेकिन साजिद तारर साहब, आपका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, आपसे चंद क्वेश्चंस में करना चाहूँगी, और इरफान मलिक साहब ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं उस पर भी आपके सामने वो रखना चाहूँगी। आप ये बताइएगा सबसे पहले तो कि एक जो बेसिक क्वेश्चंस ये ऐलान सुनने के बाद आम लोगों के जहनों में आया है वो ये है कि कई दहाइयों से अमरीकी सुदूर जो है वो इस फैसले को टाल रहे थे, सदर ट्रंप को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा?
देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अमेरिकन डेमोक्रेसी रिफॉर्म हो रही है, बल्कि सिर्फ अमेरिकन डेमोक्रेसी रिफॉर्म नहीं हो रही, पूरी दुनिया में जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है। अब देखें, पहले ट्रेडिशन ये आता रहा कि लोग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे वो वादे करके आते थे, डिलीवर कुछ नहीं करते थे, और ये पहली चीज नहीं है जो डिलीवर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने ओबामा केयर के बारे में भी ट्राई किया, टैक्स कट के ऊपर भी उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने अगले दिन कुछ अरसा पहले नॉर्थ कोटा में जाके लैंड वापस करने की, वो अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। ये नॉन ट्रेडिशनल चीजें हो रही हैं ट्रेडिशन से हटके। और दूसरा, ये फैसला 1995 में कांग्रेस ने किया था, किसी के पास करज नहीं थी कि उसको इन्फोर्स कर सके, उन्होंने उसको इन्फोर्स किया है, तो उस मामले में। और दूसरा, उसकी खास वजूहत थी कि उन्होंने अपने एवेंजुलिस्ट वोटों को वोटर्स को प्लीज किया है, उन्होंने अपनी यहूदी लाबी को खुश किया है। और देखें, लोगों के डोनर्स से हमारे लिए लम्हा प्रक्रिया ये है, खासकर बिलखसूस पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए, कि वो एक ही बास्केट में सारे एग्ज रख के तो बस उसके खिलाफ, और अभी तक उनकी कोई सपोर्ट नहीं है सिटिंग प्रेसिडेंट के पीछे, मीडिया खिलाफ है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी मीडिया, एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस, तो ये सारी चीजें रिफॉर्म हो रही हैं, नई चीजें जमहूरियत का रुख दूसरी तरफ लेके जा रही है, जो कि एक नॉर्मल जमहूरियत है ट्रेडिशन से हटके। तो ये उसी की एक कड़ी है, उन्होंने अपना एक मैंडेट में जो अपना उनका जो था वो डिलीवर करने की कोशिश की है, और उन्होंने, और यही एक लीडरशिप होती है, डिसीजन लेके उस पे खड़ा होना, अपना मैंडेट जो वादे किए थे वो पूरा करना।
राइट सर, तार साहब, कल व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने जो सारा सैंडर्स ने जो बात की है कि सदर के इस ऐलान से, इस फैसले से अमन अमल जो है वो मुतासिर नहीं होगा, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि कयाम अमन के लिए ये कदम जो है सदर का मुस्बत साबित होगा, लेकिन इसको इसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई कि कैसे। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ कि इससे उनका मुराद क्या था और किस तरह ये अमन के लिए साबित हो सकता है?
देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने कैंपेन के दौरान दो दफा कश्मीर की सालसी की ऑफर कर चुके हैं, वो भी अमन के लिए, और इससे पहले अपने ड्यूरिंग कैंपेन उन्होंने कई दफा मेंशन किया इस बात को कि वो इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए भी फोकस करेंगे, ट्राई करेंगे। और इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में अब क्योंकि प्रेशर पड़ेगा इस चीज से, ये दोबारा चीज टेबल पे आ गई है पैलेस्टीनियन इशू, और मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव साइड पे टर्न लेके जाएगा और इट विल हेल्प पैलेस्टीनियन ऑन द लॉन्ग रन।
ठीक जी, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर अता मोहम्मद साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। आप ये बताइएगा कि सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में क्या रद्दअमल जो है वो सामने आ रहा है सदर ट्रंप के इस फैसले के हवाले से।
शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि इस इशू को इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजर में बात की जाए,
प्लीज,
ताकि उसमें देखें। मेरे ख्याल में ये कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है और ना ये कोई पॉजिटिव असर डालेगी। देर आर सीरियस कंसर्न कि ये जो मिडल ईस्ट में और स्पेशली यूरोप में जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी गोल्स एंड रिलेशनशिप है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं और हो चुके हैं। इस जो डिसीजन और स्पीच है इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। अरे तो हमें ये देखना चाहिए कि ट्रंप इंतजामिया या ट्रंप डेमोक्रेसी की, ये डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें जो ये डिसीजंस हुए ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला नहीं है बल्कि यहाँ पे इंटरनेशनल कानून की, यूएन की करारदादों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ये एक जज्बाती फैसला है। ये बिल्कुल एक कानूनी, जितने भी करारदादें यूएन की हैं या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हैं या पीस की करारदादें, उनके बिल्कुल मुनाफी है। तो ट्रंप को आखिर ये फैसला करना क्यों पड़ा? अगर हम ट्रंप इंतजामिया के अंदरूनी तौर पे हालात देखें तो अभी रिसेंटली उनके जो एक बहुत ही काबिल और बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन थे माइकल फिलन, इनका जो एक स्टेटमेंट सामने आई है जिनमें उन्होंने कन्फेस किया है कि रशिया के इन्वॉल्वमेंट करंट इलेक्शन में थी, तो ये एक बड़ी संगीन किस्म की कार्रवाई है जो मलर कर रहे हैं और इसके बड़े संगीन किस्म के नतज सामने आ रहे हैं। तो ये चूंकि एक बहुत बड़ा इशू शुरू हो रहा था तो अंदरूनी डोमेस्टिक के मामलों को छुपाने के लिए और दुनिया की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कराने के लिए ये एक नई कोशिश की गई है और जिसमें ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि मिडल ईस्ट को सोचे समझे मनसूबे के तहत डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। और इस बारे में हम देखें कि सलामती काउंसिल के 15 में से 8 मेंबर्स ने, जिसमें फ्रांस शामिल है, जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें बरतानिया शामिल है, उन लोगों ने डिमांड की है सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की इस वीक एंड पे। तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्री की तरफ से कोई खैर मकदम किया गया इस पॉलिसी का, ये इस बात का। और जो मिडल ईस्ट के हालात चल रहे हैं उन हालात, जो कतर की सिचुएशन है, जो यमन की सिचुएशन है, जो सीरिया की सिचुएशन है, उन सूरत हाल में ये पॉलिसी बिल्कुल अमन का कोई ऐसा पैगाम नहीं देगी बल्कि ये तो उस जलती हुई आग में तेल छिड़कने के बराबर होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक सीरियस मैटर है जिसमें इंटरनेशनल कानून को भी देखना होगा। ऐसा नहीं है अगर एक बंदा डेमोक्रेसी में एक अपना मैनिफेस्टो लेके आता है, बट दैट मैनिफेस्टो आल्सो मींस कि दे हैव टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल।
ओके, आप जो इंटरनेशनल कानून की बात कर रहे हैं, क्या आप हमें मजीद बता सकते हैं कि इस फैसले से जुड़े कानूनी मसाइल जो हैं वो क्या हैं, और अगर उनको वाकई यूएन के प्लेटफॉर्म में जिस तरह सलामती काउंसिल का इजलास जो है वो होने वाला है अनकरीब उसमें उठाया जाता है, तो क्या सदर ट्रंप के इस फैसले पर उसके क्या असरात हो सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल कोई भी बंदा इस बात को या कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, जर्मनी की चांसलर की जो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी स्टेटमेंट आई है, ब्रिटिश की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आज ब्रिटिश की तरफ से एक बड़ी सख्त स्पीच भी की गई है। तो आप देखें कि कानूनी तौर पे भी अमेरिका जो अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं उनसे वो दूर होता जाता है, आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। अगर हम ये भी देखें कि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ रिसेंट किस कदर मजबूत ताल्लुकात इस्तवार हुआ और किस तरफ एक दूसरे को पैक किया है, उसके बावजूद शाह सलमान की स्टेटमेंट आई है एट द वेरी सेम डे कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कानूनी नुकता है उसमें ये हो सकता है कि आप देखें टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी महीने अमेरिका के नायब सदर की महमूद अब्बास के साथ मीटिंग थी जो कि अब कैंसिल की जा रही है। तो अगर ये एक पीस प्रोसेस होता जिससे फलस्तीन को भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, इस मीटिंग को होना चाहिए था, उसके बाद एक ऐसा डिसीजन लिया जाता, तो मेरे ख्याल में इसके यूएन की बिल्कुल वाजह तौर पर قراردادیں موجود ہیں جس میں دونوں ملکوں کے درمیان, جو کہ فرانس میں اس کو بولا بھی ہے کہ جب تک دونوں ملکوں کے درمیان کا مسئلہ ان کی مشاورت سے نہیں کیا جاتا, یہ تو یونائٹیڈ نیشنز کی قراردادوں میں سے ایک قرارداد ہے, ان کے قوانین میں سے ایک قوانین ہے, جیسے پاکستان انڈیا میں کشمیر کا ایشو, اگر پاکستان اور انڈیا اس ڈبیٹ میں نہیں بیٹھتے تو کوئی تیسرا پلی کیسے اس کا ڈیسیزن لے سکتا ہے؟ دس از وائلیشن آف انٹرنیشنل لا.
ٹھیک, اوکے, آپ بتائیے گا عرفان ملک صاحب کہ اس حوالے سے جس طرح عرب لیگ کا اجلاس ہونے والا ہے, یو این سلامتی کونسل جو ہے ان کا اجلاس ہونے والا ہے, ان میں اگر بیشتر جو اراکین ہیں وہ اس صدر ٹرمپ کے ڈیسیجن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا اس سے صدر ٹرمپ کا جو فیصلہ ہے وہ ریورس, وہ اس کو کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟
میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ ریورس ہوگا. مطلب ایک تو جیسا میں نے کہا یہ سمبولک ہے, اب وہ فزیکل موو ایمبیسی کی کب ہوتی ہے وی ڈونٹ نو. اور جو عرب آرگنائزیشنز ہیں وہ تو دیکھے جی, دے آر ویری ویک, دے کین کم آؤٹ ود اے سٹیٹمنٹ, پر اس سٹیٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں. یورپین یونین کا آپ کہہ سکتے ہیں, اور یورپین یونین میں بھی یہ جو ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف اپنے ایک ایونجیلیکل جو کرسچنز ہیں اس بیس کو خوش کیا ہے, کیتھولکس جو ہیں وہ اس ڈیسیجن سے خوش نہیں ہیں, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جیروسلم جو ہے, کیونکہ وہ ان کی بھی ایک ریلیجس سائٹ ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس جیروسلم, اسپیشلی جو ایسٹ جیروسلم کا ایریا ہے, اولڈ سٹی, وہ کسی یونائٹیڈ نیشن کے یا کسی ایک گورنمنٹ کا اس میں انٹرفیئرنس نہ ہو, کوئی ایک انٹرنیشنل باڈی ہو جو اس کو کنٹرول کرے, کیونکہ وہاں پہ اسلام, کرسچینٹی اور جیوڈزم تینوں کے سائٹس ہیں. اب جو لوگوں کو جو شک ہے یا جو فکر ہے کہ یہ جو ابھی تو انہوں نے جیروسلم کیا ہے, پر وہ آہستہ آہستہ وہ ایسٹ جیروسلم میں بھی یا جو اولڈ سٹی ہے اس میں بھی ان کا کنٹرول اسرائیل کا آتا جائے گا, اور وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ نہ ہو کہ آج سے کوئی سال بعد اگر آپ نے جانا ہے ایسٹ اولڈ سٹی میں تو آپ کو اسرائیل گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے اور سارا کچھ. تو اس لیے آئی تھنک جو یورپین یونین ہے ان کی ذرا زیادہ ہوگی پوش. جو عرب ممالک ہیں اور جو امریکن مسلمز ہیں, سچی بات ہے کہ ہماری نہ اتنی انفلوئنس ہے نہ ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ ہم اس ڈیسیجن کو کوئی تھوڑا سا بھی ہلا سکیں. آپ مسجدوں میں بول سکیں گے, کر سکیں گے, بٹ ان کا وہ جو ٹرمپ صاحب کا جو 25-35% بیس ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کے ہٹ کے اور کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک, چیز
اوکے. ایک اور جو بات کی جا رہی ہے ساجد طارق صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس اعلان سے ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی جو امریکی پالیسی ہے, ان کی جو کوششیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے. کہاں تک آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟
دیکھیں, میرے خیال میں جس طرح پہلے ملک صاحب کہہ رہے تھے, اس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا امپیکٹ نہیں ہونا ہے. اسلامک, آپ دیکھیں اسلامک ورلڈ کے حالات کیا ہیں, ہر طرف مایوسی, بے روزگاری, یوتھ ان امپلائڈ ہے, اور اس کا کوئی میرے خیال میں سگنیفیکینٹ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور دیکھا جائے تو میرے خیال میں اگر پوچھیں تو یہ کئی کنٹریز کے ساتھ انہوں نے بات کر کے اس چیز کا ڈیسیجن لیا گیا ہے, اور میجارٹی کنٹریز وہ جو اپنے عوام کا رد عمل ذہن میں رکھ کے چیزیں کرتے ہیں, یہ اوپر سے تردید کرتے رہیں گے, لیکن در حقیقت اگر پوچھا جائے تو یہ ساری چیزیں سوچے سمجھے طریقے سے کی گئی ہیں, ڈیسیجن بڑا سوچ سمجھ کے لیا گیا ہے. ہاں, ایران کے حوالے سے, ایران کی گروتھ اس ایریے میں, مڈل ایسٹ ایریے میں, پچھلے 8 سال کی کمزور فارن پالیسیز امریکن کی, اس کی وجہ سے ان کا انفلوئنس اتنا بڑھ چکا ہے جس کی حد نہیں ہے. ہاں, اس کا تھوڑا میرے خیال میں تھوڑا بہت فائدہ آئیسس کو یا دوسری جہادی تنظیموں کو ہوگا, وہ اس کو ایک مذہبی رنگ دے کے آگے اس کو ایگزیجوریٹ کریں گے, وہ ان کو ریکروٹمنٹ میں ان کو ہیلپ ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی اسلامک آرگنائزیشنز کی دکانداری چلے گی, پیسے بنائیں گے, وہ لوگوں کو مینیپولیٹ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی لمبا چوڑا اتنا اس کا ریئیکشن لارجر اسکیل پہ میری نظر میں نہیں ہوگا.
اوکے, ڈاکٹر اطہر صاحب, ایک پوائنٹ جو اٹھایا ہے عرفان ملک صاحب نے شروع میں, وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس اعلان سے پہلے ہی مسلم رہنما جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے جو انہوں نے بظاہر نہیں کیا, ये बात भी की जा रही है, जिस तरह साजिद तारर साहब ने भी कहा कि सदर ट्रंप की तरफ से ये फैसला जो है वो अचानक नहीं किया गया इतलात, बल्कि ये है कि ऐलान करने से पहले सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने फ़लस्तीनी जो लीडर है महमूद अब्बास उन समेत सऊदी अरब और उर्दन के जो रहनुमा हैं उनसे फ़ोन पर बात की है और उन्हें अपने इस ऐलान से मुतलिक उनको आगाह किया है। तो क्या मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसको हम कहाँ तक ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए, मुसलमान जो रहनुमा हैं वो हम क्या कहें इसको कि वो सदर ट्रंप को कन्वेंस करने में नाकाम रहे हैं या उन्होंने कन्वेंस ही नहीं किया?
मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम दुनिया में जो OIC फोरम है वो फाल नहीं है, या अगर फाल है तो वो इतना मुअसर नहीं है कि जो अपना किरदार अदा कर सके या अपना वो एक हिस्सा डाल सके उसकी बात में इतना वजन हो। तो मेरे ख्याल में इसमें मुझे कुछ थोड़ा डाउट थोड़ा फील होता है, क्योंकि जिस तरह का एक रिएक्शन आया पूरी दुनिया से, और अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं जैसे कि एनवायरमेंट की पॉलिसी के ऊपर ट्रंप ने एक सख्त बयान लिया, कनाडा की तरफ से रिएक्शन आया और उसके बाद फ्रांस की तरफ से रिएक्शन आया, क्योंकि वो जो कॉप कॉन्फ्रेंस थी फ्रांस में थी, फिर बाद में जब ट्रंप और इमानुएल की मुलाकात हुई तो ट्रंप ने इशारा दिया कि हम अपने डिसीजन पे रिव्यू करेंगे। मेरे ख्याल में ये बात आपकी ठीक है कि या तो मुस्लिम लीडर्स जो थे चंद लोगों ने बात की है इससे पहले, लेकिन मे बी इट वॉज टू लेट, जैसे उर्दगान ने बात की बड़ी सख्त बात उन्होंने की। मेरे ख्याल में ये कि ट्रंप साहब एक डिसीजन दे चुके थे, उसके लिए मैंने आपको इशारा दिया कि उनकी जो डोमेस्टिक अंदरूनी सियासत है वहां पे ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप को मजबूत करने के लिए ज्यूश लॉबी की सख्त जरूरत है इन हालात में, और उन्होंने उस ज्यूश लॉबी को अपने साथ मिला लिया। बाकी हमारे सामने हिस्ट्री पड़ी है, ये कोई ज्यादा देर की बात नहीं, एक डिकेड की बात है, अफगानिस्तान के ऊपर डिसीजन था, इराक के ऊपर डिसीजन था या सीरिया के ऊपर डिसीजन था, तो आपको पता है करारदादे कितनी मंजूर हैं, यूनाइटेड नेशन के कितने इजलास हुए, लेकिन यूनाइटेड नेशन के इजलासों के बावजूद US ने जो एक डिसीजन लिया, जो एक पॉलिसी बनाई, वो उसी पॉलिसी के ऊपर गामसन है। ड्रोन की पॉलिसी आपके सामने है, एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन US की वो पॉलिसी जारी है, जमन में भी पाकिस्तान में भी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अब कुछ चीजें सामने आ रही हैं, जैसे ब्रिटिश की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, स्पेशली यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो खासा रिएक्शन आ रहा है जो कि एक वजन रखती है। US को हमेशा असर पड़ेगा उन कंट्रीज की तरफ से जहां उनके बायलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, जैसे चाइना है, जैसे मिडल ईस्ट तो बिल्कुल US के रहमो करम के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा तो वो यूरोप की तरफ से आएगा, मिडल ईस्ट की तरफ से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा आएगा। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जैसे 1993 में 2003 में दो तहरीके फलस्तीन की आजादी की चलाई गई जिसमें काफी जाने नुकसान हुआ,
हालात की तरफ जाते
हैं, इंतफाद की जो तहरीकें चलाई गई हैं, तो अब अगर तीसरी हमास ने एक ऐलान किया है कि वो फिर एक इंतफाद की तहरीक चलाएंगे, तो ये एक सिचुएशन थोड़ी मिडल ईस्ट में चूंकि पहले एक जंगी माहौल बना हुआ है, तो ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। और चूंकि जियोग्राफिकल लोकेशन से लिहाज से देखा जाए तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला जो रीजन है वो यूरोप होगा, इसलिए यूरोप इस पॉलिसी के खिलाफ है।
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता मोहम्मद साहब आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इरफान मलिक साहब और साजिद तारर साहब मज़ीद कुछ देर के लिए आप दोनों हमारे साथ रहिए, कुछ देर में पाकिस्तान से डॉक्टर मेहदी हसन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनको लेने से पहले कुछ कॉलर्स हैं काफ़ी देर से, उनको हम सुनना चाहेंगे। अटक से फ़तेह मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। जी गुलाम खान है अटक से, जी अस्सलाम वालेकुम।
जी गुलाम खान हूँ जी, मैं अटक से।
जी
मेरा नाम जरा याद कर ले, मैं तो करता ही रहता हूँ बातचीत बाहर। मैं तो सदर ट्रंप साहब की बहादुरी और प्रैक्टिकबिलिटी का बहुत मोतरफ हूँ, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं, दूसरे मुल्कों को डू मोर का पैगाम देते हैं, अगर वो ऐसा ना करें तो वो खुद एक्शन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अपने एक एक्शन की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया को नचा कर रख दिया, पता नहीं अंजाम क्या होगा। वसलाम,
शुक्रिया आपका। मोहम्मद शिफा चित्राल से, जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शिफा चित्राल से नेक्स्ट कॉलर है। जी जी मोहम्मद शिफा बात करें प्लीज।
हेलो,
जी जी आपकी आवाज आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी, फिदा बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ।
जी 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 फिदा मोहम्मद साहब,
जी जी मैं मैडम मैं इरफान साहब से या खाजिद साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंडिविजुअल एक आदमी ठीक हो और उसके तमाम दोस्त जो है वो उसे एग्री ना करें और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्री ना हो, एक बात। दूसरी बात ये है, साजिद साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के जो मुसलमान है उनका वो अपने सर पे हाथ रख के ऑनेस्टली बताएं कि जी इस फैसले के अगेंस्ट क्या जो 1-2% या 0.5% जो एक्सट्रीमिस्ट है मुसलमान अमेरिका के अंदर उनके मसाइल इंक्रीज नहीं होंगे। और तीसरी बात, मिडिल ईस्ट के अंदर जो मुसलमान इस्लामिक जो मुल्क हैं उनको तो छोड़ दें, लेकिन जो जो इन्होंने उभारा है एक एक्सट्रीमिज्म को उसका नुकसान नहीं होगा? जैसे अलकायदा उभरा है तो हिजबुल्ला को और जो एक्सट्रीमिस्ट जो जमात है ऐसा इसको मजीद वो उनके अंदर इमोशनल मजहबी जो मसला है ये इंक्रीज नहीं होगा मैडम?
ओके, ये बिल्कुल साजिद तार साहब से हम पूछते हैं, लेकिन एक और कॉलर को भी सुनते हैं कश्मीर से, शौकत साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। शौकत साहब, मोहम्मद तारिक चोखताई कसूर से जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बहन पैनलिस्ट अज़रा से मेरा ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो हालिया यूरेशन वाला इकदाम उठाया है, इससे क्या अमेरिका खत्ते में एक तो तनहा हो जाएगा और दूसरे नंबर पर ये एक जहन्नम का जो दरवाजा खोला गया है ये ना खत्म होने वाली जो लड़ाई का आगाज अब अमेरिका से शुरू हुआ है, क्या ये एक नई किसी जंग की शुरुआत तो नहीं हो रही? तो मेरा रिक्वेस्ट पैनलिस्ट से ये क्वेश्चन है कि ये क्या हो रहा है सब कुछ
जी। साजिद तार साहब, इसका जवाब अगर आप दें प्लीज।
अब ये देखें कि हमारे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई इस्लामिक कंट्री उठा है? आपकी जो 26 मुल्कों की फौज बनी हुई है वहां पे, उनका क्या रोल है? किसी इस्लामिक कंट्री का क्या रोल है? आज अगर देखा जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड की स्टेट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड क्या है? टूटी फूटी जमहूरियतें, करप्शन, किंगशिप्स, नो फंडामेंटल राइट्स, फिर उन कंट्रीज को इस तरह रन कर रहे हैं जिस तरह बाप का कारोबार होता है। ये सारी चीजें मिली जुली हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर बर्मा के मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता तो आज ये क्या होगा? इसके बारे में कुछ भी नहीं होना। ये मैं बताने दूसरी सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, ये टेरिटोरियल इशू है, ये रिलीजियस इशू नहीं है। और तीसरी बात ये बताऊंगा कि हमास पनामा लीक्स के अंदर हमास के जो वहां पे लीडर हैं उनके बच्चों के अकाउंट है वहां पे। हमास जो है वन ऑफ द करप्ट रूलिंग पार्टी है वहां पे, लोगों को बताया नहीं जाता। पैलेस्टीन की ज्यादा जो वहां पे चीजों को बताया जाता है, वहां पे ज्यादातर लैंड उन्होंने इसराइलियों को यहूदियों को बेची है जो अब क्लेम कर रहे हैं। तीसरी बात ये नहीं बताई जाती उनको, जब जॉर्डन में इन्होंने रिफ्यूजी कैंप्स बनाए थे तो इन्हीं फलस्तीनियों ने किंग ऑफ जॉर्डन पे अटैक किया था। और पाकिस्तान, जिस तरह के मैं जाती तौर बताता हूं, हाँ हमारी मजहबी दुकानें खुली हैं जो वो उनके लिए कारो उनके लिए एक इशू बन गया, वो इस पे से पैसे बनाएंगे वो, लेकिन इसका कोई अमरीका पे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। बताता चलूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकनों के वोट लेके जीते हैं, एवेंजुलर्स के वोट लेके जीते हैं, 100% लोगों जिन्होंने वोट डाले थे 98% अभी तक उनके साथ इंटैक्ट है, उनको सपोर्ट करते हैं। मैंने शुरू में अर्ज की थी अमेरिका में जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है, अब लोग अब मैंडेट मांगते हैं, लोग अब कहते हैं कि हमने आपको वोट दिए थे, मैंडेट किधर गया है? होप और चेंज ओबामा साहब लेकर आए थे शिकागो से, शिकागो अभी तक जल रहा है, अभी तक जल रहा है 8 साल के बाद भी। लेकिन उन्होंने ना होप दे सके हैं ना चेंज दे सके हैं, अब क्योंकि ये रिफॉर्म हो रही जमहूरियत, ये मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना मैंडेट डिलीवर करें, तो उस मैंडेट का हिस्सा था ये डिलीवर कर रहे हैं, हर चीज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उसमें सारे इन सारी चीजों के आपके ख्याल में उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया होगा कि इक्का दुक्का जुलूस निकलेंगे, अमरीका के झंडे जलाए जाएंगे, उनके पुतले बना के जलाए जाएंगे, जलेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने अरसे से बर्मा जल रहा है, उसके बारे में मैं आपके कॉलर से यही क्वेश्चन करूंगा कि हमारे वो किधर गए सारे जो लीडर हैं इस्लामिक, हमारी इस्लामी फौज की तरीके क्या किया है? तड़प रहे हैं वो, दुनिया के लिए मिसालें बन चुके हैं। टाइम मैगजीन इस पिछले महीने के टाइम मैगजीन में उनकी स्टोरी छपी है कि भूख से सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो इसका एक इसको प्लीज मजाक ना बनाया जाए, वो अपना एक मैंडेट लेके हर, और मजे की बात ये, हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जीत के आता था अपने मैंडेट में ये कहता था कि मैं एम्बेसी को शिफ्ट करूंगा वहां। और 1995 में डिसीजन कांग्रेस ने लिया, ये कोई नई बात नहीं है, ढकी छुपी नहीं है।
ठीक,
लेकिन ये चल रहा है सिलसिला मेरे ख्याल में। जाती तौर से मुझसे पूछें, ये इक्का दुक्का अमेरिका के झंडे जलाए जाएंगे, वो भी ज्यादा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी लोग ज्यादा जज्बाती हैं इस्लाम के मामले में। और दूसरी ये बात ये है कि वहां की मायूसियां, वहां की अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां पे कुछ रिएक्शन होगा इसका, इजिप्ट में हो सकता है और कुछ इस तरह के कंट्रीज में। लेकिन दूसरे कंट्रीज तो जिस तरह वो तो मार देते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है वहां, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमने हमारी मुस्लिम वर्ल्ड का अपना होमवर्क ही बड़ा कमजोर है, हमने होमवर्क ना किया है ना कर पा रहे हैं, और ये उन्हीं चीजों का सारा आगे।
ठीक, आपने मुजाहिरों की बात की और पाकिस्तान में भी आज नमाज जुमा के बाद कहा जा रहा है साजिद तारिश साहब के मुजाहिरे हुए हैं काफी, बल्कि इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के दीगर तमाम शहरों में कहा जा रहा है हुए हैं। डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है, उनके पास हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहदी हसन साहब। जी डॉक्टर मेहदी हसन साहब, सदर ट्रंप के ऐलान के जो असरात हैं वो पाकिस्तान में किन शक्लों में और कहां तक नजर आ रहे हैं?
देखिए, जहां तक उनके ऐलान के बाद मुजाहरों का ताल्लुक है, उससे कोई असर पैदा होने वाला नहीं है। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। इस्लामी दुनिया जो है वो कमजोर है, वो मुत्तहिद नहीं है और वो इस काबिल नहीं है कि वो एक सुपर पावर का मुकाबला कर सके। जहाँ तक सदर ट्रंप के पॉलिसीज और उनके अलावा का ताल्लुक है, उन्हें खुद अमेरिका में वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो अमेरिका की पॉलिसीज को हासिल हुआ करती थी। बहुत से लोग जो हैं अमेरिका में और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सदर ट्रंप की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करती और उसका इजहार होता रहता है। उनकी तरफ से कई बयान ऐसे आ चुके हैं कि जो कुछ वो कहते हैं इस्लाम दुश्मनी में और मुसलमानों की दुश्मनी के सिलसिले में, उसमें उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है अमेरिका की वो उनके साथ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका अगर उन पॉलिसी पे अमल करेगा जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, तो वो दुनिया में बिल्कुल तरह रह जाएगा, जो उसकी सुपर पावर पोजीशन जो है उसको मुतासर करेगी। लिहाजा ये गौर करना अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का उनका काम है कि वो इस पर गौर करें और ये सोचें कि जो मुसलमान दुश्मन पॉलिसीज हैं ट्रंप साहब की, उससे उनको फायदा होगा या अल्टीमेटली नुकसान होगा। जी
ठीक, अब आते हैं उन मुजाहिरों की जानिब जो आज पाकिस्तान में हुए हैं। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, अगर हम पीछे देखें, तारीख को अगर देखा जाए, तो इन मुजाहिरों का फ़ायदा जो है वो कितना हुआ है, इसका मकसद जो है वो क्या होता है और कहाँ तक मुजाहिरीन जो हैं अपने मकासद में कामयाब हुए हैं आज तक?
देखिए, मुजाहिरों का ताल्लुक जहाँ तक है, मुजाहिरे सिर्फ पाकिस्तान में तो पब्लिक ओपिनियन को मुतासर कर सकते हैं और जिन्होंने मुजाहिरे किए हैं वो अपनी साख को बरकरार रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ जो पॉलिसीज, जो बयान, जो पॉलिसीज अमेरिका ने अपनाई है उसके खिलाफ वो अपने रमगुस्से का इजहार कर दें। लेकिन यहाँ तक उसके असरात का ताल्लुक है या उसके कोई नतायज निकलने का ताल्लुक है, उसका कोई असर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की हद तक तो ठीक है कि ये पता लग जाएगा पाकिस्तान के लोगों को, पब्लिक ओपिनियन को, कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, लेकिन उसका कोई इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इम्पैक्ट होगा जिससे अमेरिका की पॉलिसी को तब्दील करवाने में कोई मदद मिल सके।
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ابھی یہی بحث ہو رہی تھی اور ساجد تھارر صاحب جو ہیں, عرفان ملک صاحب پیرس یونیورسٹی سے, ڈاکٹر عطا محمد صاحب تھے, انہوں نے اس بات پہ کہیں ایگری کیا ہے, اتفاق کیا ہے کہ اس اعلان کا بلیم جو ہے وہ مکمل طور پر صدر ٹرمپ کو دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کا فیصلہ کانگریس میں 1995 میں ہوا تھا, یہ امریکہ کی ایک کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے امریکہ کی پالیسی تھی, صدر ٹرمپ نے اس کو وہ اس کا اعلان محض کیا ہے. ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے جو کئی سعودی عرب, اردن سمیت جو اسلامک ممالک ہیں ان کے لیڈران کو آگاہ کیا تھا اپنے اعلان سے. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلامک ورلڈ جو ہے انہوں نے کہاں تک فلسطین اور اسرائیل جو تنازع ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے, امن پروسیس کو آگے بڑھانے سے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے. ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیلی دفاتر جو ہیں 95% وہ پہلے ہی یروشلم میں موجود تھے. صدر نے بقول ریپبلکن پارٹی کے, صدر ٹرمپ نے محض ایک حقیقت کو وہاں پر ریکگنائز کر کے یہ اعلان کیا ہے. ان دفاتر کو روکنے کے لیے مسلمان رہنماؤں نے کیا کیا, یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. تو ان اینگل سے آپ اس ایشو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک فلسطین کی جدوجہد کا تعلق ہے, دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں تقریباً 55-54 ممالک, ان کی طرف سے فلسطین کو وہ مدد حاصل نہیں ہے ان کی جدوجہد میں اور ان کے موقف کو سپورٹ کرنے میں جو عام طور پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو حاصل ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جو مسلمان ممالک ہیں, خاص طور پہ میں پاکستان کا حوالہ دے سکتا ہوں, یہاں جو لوگ سوچتے ہیں, خاص طور پہ جو ریلیجس رائٹ ہے پاکستان کی, ان کو یہ اعتراض ہے کہ فلسطین کی جو جدوجہد ہے وہ کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں ہے بلکہ وہ سیکولر ٹائپ کی جدوجہد ہے اپنے حقوق کے لیے, لہذا وہ اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتے جس طرح کی سپورٹ ایکسپیکٹڈ تھی. اور اگر وہ سپورٹ کریں گی تو پاکستان میں تو پبلک اوپینین جو ہے وہ آلریڈی فلسطین کے حق میں ہے, لیکن اس کا کیا انٹرنیشنل امپیکٹ ہوگا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مظاہروں سے یا کسی اور مسلمان ملک میں مظاہروں سے فلسطین کے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پبلک اوپینین ضرور ہموار ہو جائے گی, اور میرا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں مسلمانوں کے بارے میں, اس کو خود امریکہ میں کوئی بہت زیادہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. لہذا جہاں تک پبلک اوپینین کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہے, وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے, اور فلسطین کی جو انہوں نے پالیسی اپنائی ہے اب, اس سے خود امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرا خیال ہے وہ اس سے ایگری نہیں کرتی. اور بہت سی ایسی پالیسیز ہیں صدر ٹرمپ کی جن کی تردید کر چکی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کی بھی تردید جو ہے وہ آ جائے گی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف.
اوکے, ایک کوسچن پھر یہ بھی ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, جس سطح پہ آج ہمیں مظاہرے جو ہیں وہ نظر آئے ہیں ٹی وی چینلز پہ پاکستان میں, اس طرح کے مظاہرے جو ہیں وہ چین کے صوبہ سنکیانگ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اس حوالے سے کیوں ہمیں نظر نہیں آتے پاکستان کے اندر اور باقی مسلم چند ممالک میں بھی؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ مذہب کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے پاکستان میں کچھ مقاصد کے لیے؟
دیکھیے, پاکستان کی جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کی سیاست پہ مذہب کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اگر کہ مذہب کے ذریعے سے سیاست کرنے والے بہت مائنورٹی میں ہیں, کوئی میجورٹی میں حاصل نہیں ہے, जितने इलेक्शन आज तक पाकिस्तान में हुए हैं, 9 इलेक्शन हुए हैं अब तक, उनमें से किसी ने मजहब के नाम पे सियासत करने वाली जमातों ने डबल फिगर में नशस्तें हासिल नहीं की, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली की। तो आवाम जो है वो सियासत को मजहब से अलग करने के हक में बहुत वाजे तौर पे अपनी पॉलिसी एक रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शिनजियांग में जो कुछ हो रहा है उसमें क्योंकि पाकिस्तान के आवाम में पब्लिक ओपिनियन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त जो है वो चाइना है, तो चाइना के बारे में वो कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है
चाहे वहाँ मुसलमानों के साथ जो भी हो
किया जा सके। जी
चाहे डॉक्टर मेहदी हसन साहब वहाँ मुसलमानों के साथ जो भी हों, ये भी इतलात हैं कि इस सूबे में मुसलमानों की मेजॉरिटी है चीन के इस सूबे में, और उनको इवन रोज़ा रखना जो है उसकी इजाज़त नहीं है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लाउड स्पीकर पे आज़ान देने की इजाज़त नहीं है। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर मेहदी हसन साहब, थैंक यू सो मच। इरफान मलिक साहब, साजिद तारर साहब, आप दोनों हमारे साथ रहिए। कुछ कॉलर्स को हम सुनते हैं मुख्तसरन। लियाकतुल मुल्क दीर से, जी अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ तक शिनजियांग में मुसलमानों का पूरी दुनिया में उस पर रद्द अमल ना होने का की बात है, या रोहिंग्या या दूसरे ममालिक, वो एक अलहदा हैसियत रखती है इसके मुकाबले में कि यरूशलम और खासकर बैतुल मुकद्दस, ये ईसाइयों का, यहूदियों का और मुसलमानों का एक मुकद्दस जगह है और ये एक इसकी एक हिस्ट्री है। तो ट्रंप साइड का ये जो डिसीजन है ये इंतहाई, मैं तो ये समझता हूँ कि अब दुनिया में कुछ होने वाला है। बात ये है कि ये क्लिंटन के दौर से, रीगन के दौर से, और फिर बुश साहिबान और ओबामा के दौर में भी इंडिजिनस इसराइल जो अमेरिका में वोट देते थे, या एक्सटर्नल इसराइल के जो वहाँ फंडिंग करते थे इन लोगों को, तो ये उस वक्त से ये मामला चल रहा था कि वो इस तरह ही नेतन्याहू और जो ट्रंप साहब है इसने जो कुछ किया है इसके अपने यहूदी भी मुखालिफ है। नेतन्याहू के अलावा ऐसे यहूदी लोग हैं जिनके पेशवा है वो इसके खिलाफ है, और वो कहते हैं कि ये अब ये आग को और ज्यादा बढ़ेगा इस मसले से, और ये मसला इतना ज्यादा होगा कि मुसलमानों को भी नुकसान होगा लेकिन यहूदियों के लिए भी एक बड़ा मसला बनेगा पूरी दुनिया में। तो इसकी अपनी एक हैसियत है, और ये ट्रंप साहब ने जो कुछ किया है ये अच्छा नहीं किया है, अगरचे ये वापस नहीं ले सकता अपने डिसीजन को।
ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने का लियाकतुल मुल्क साहब, आपकी ये राय थी। मोमन तेजेंसी से गुलजमीन, लास्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम मैडम
जी। वालेकुम सलाम।
ट्रंप ने जो ऐलान किया है बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी इकदाम ने इस्लामी दुनिया को गहरा जख्म दिया है। हुकूमत पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के साथ मिलकर आलमी बरदरी के सामने एहतजाज करे और मसले को अकवाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन की तंजीम में भरपूर अंदाज में उठाना चाहिए, और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों की समेत मुख्तलिफ मजाहिब के लिए इंतहाई मुतबर है। और ट्रंप साहब ने जो ऐलान किया है, जो फैसले किए, ये बहुत गलत है, ये उनके लिए
बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप साजिद तारर साहब, हमारे कॉलर्स को सुना इस सेगमेंट को, बल्कि अगर आप वाइंड अप भी कर लें प्लीज।
देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स, इसके बाद क्योंकि ये इस इशू को अब टेबल पे लाया गया है और इसको निपटाया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की विल थी कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो उसको बनाया जाए, एग्जिस्ट के उसको पैरेलल चलाया जाए इसराइल के। और जिस तरह दूसरे प्रेसिडेंट जो ये भी डिलीवर नहीं कर सके, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये डिलीवर करेंगे पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट बिसाइड इसराइल। कश्मीर के बारे में भी इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है, मेरे ख्याल में उसमें भी कोशिश करेंगे इंडिया और पाकिस्तान को टेबल पर लेकर आए, मेरे ख्याल में तो कुछ शायद चीजें आगे आएंगी फ्यूचर में। और ही इज अ लीडर, और दुनिया को सीखना चाहिए, देखना चाहिए, डेमोक्रेसी इज ना सिर्फ वादे करके ना डिलीवर करना, और खासकर इस हवाले से अमेरिका में नई चीजें लिखी जा रही हैं। हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमें یہاں کی ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہیے. اور دس از ہاؤ آئی کنکلوڈ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. شکریہ.
تھینک یو سو مچ ساجد طاہر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. عرفان ملک صاحب, مختصر 30 سیکنڈ میں بتائیے گا, موجودہ حالات میں مسلم ورلڈ جو ہے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ عرفان ملک صاحب,
ہلو. جی میں نے کہا مسلم ورلڈ کے پاس آپشنز تو بڑی کم ہیں, یہ ڈسکس ہو چکا ہے. دس واز اسٹرکٹلی اے پولیٹیکل ڈیسیجن, اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ان کے سیکیورٹی کاؤنسل, پینٹاگون سب اس ڈیسیجن کے خلاف تھے. یہ ٹرمپ صاحب نے صرف ایونجیلیکل ووٹ لینے کے لیے, اور خاص طور پہ اگلے ہفتے الاباما میں الیکشن ہو رہا ہے, اس ان ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. اس میں کوئی اسٹریٹیجک یا وہ جسے کہتے ہیں جیو پولیٹیکل تھاٹ نہیں تھی, اٹ واز اسٹرکٹلی اے پولیٹیکل ڈیسیجن.
بہت شکریہ آپ کا عرفان ملک صاحب, تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے, اللہ حافظ. سامعین, ایک مختصر بریک ہم لینا چاہیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے بریگیڈیئر سید نذیر, ویل نون دفاعی تجزیہ نگار ہیں پاکستان سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور بات کرتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب سے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی بریگیڈیئر صاحب, آج یہ خبر آئی ہے پاکستان سے کہ چین نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کو دہشت گردوں کے ممکنہ حملوں سے متعلق خبردار کیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بظاہر یہ ایک غیر معمولی انتباہ ہے. اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے اس وارننگ کی؟
جہاں تک چینیوں کے خطرے کا تعلق ہے تو اب تک تقریباً 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 50 چینی مختلف دہشت گرد حملوں میں, اغوا وغیرہ میں, ایسے میں مارے گئے ہیں پاکستان میں. اور دوسری بات یہ کہ چین کے سفیر کو بھی دھمکی ملی تھی, ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ جو ہے ان کی طرف سے بھی, اور اس نے بھی سیکیورٹی مانگی تھی. اور اس کے علاوہ جو چین کے باشندے دو قسم کے ہیں پاکستان میں, ایک تو وہ ایک دوسری بیٹ پر کام کرتے ہیں اور ان کے باقاعدہ کالونیز ہیں اور ان کالونی کی باقاعدہ حفاظت ہوتی ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ بزنس مین ہیں یا ٹورزم کے لیے آتے ہیں. ابھی فگر تو اتنے نہیں ہے, لیکن پچھلے سال تقریباً 70,000 کے لگ بھگ چینی پاکستان آئے تھے, اور اس دفعہ لگتا ہے 40% انکریز کے ساتھ یہ تقریباً 1,00,000 سے تجاوز کر گئے ہوں گے. تو یوں لگتا ہے کہ چینیوں کا پاکستان میں آنا بدتریج بلکہ بڑے زور سے بڑھ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ سی پیک کے منصوبے کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو یقین سیکیورٹی جو ہے کنسرن چائنا کے, خصوصاً جو موجودہ معروضی حالات ہے اس میں بالکل ہیں ان کے, اور دوسری بات یہ کہ ان پر پہلے حملے بھی ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی اس کے طور ان کی حفاظت کے لیے جو اقدامات بھی ہیں کافی حد تک وہ مطلب اپنے طور پر کچھ فل پروف ہے, اور کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ بھی ہو جاتا ہے. اور لیکن اس میں پاکستان میں تو تقریباً جو چائنیز ہیں ان کے جو جہاں پر وہ تو مستقل اس میں رہتے ہیں, وہاں پر تو باقاعدہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے, گارڈ سسٹم ہے, وہاں پر باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن کا سسٹم ہے, کیمرہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں, وہ تو زیادہ محفوظ ہوتے ہیں. البتہ جب ٹریول کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ کاروائی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ٹورزم کے لیے آتے ہیں تو اب ان کے لیے این او سی لینی پڑتی ہے اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانا ہے. دوسری بات ہے صوبائی طور پر بھی ان کے سیکیورٹی کے لیے خصوصاً پنجاب میں تقریباً 8,000 کا ایک باقاعدہ ٹاسک فورس تیار کیا ہے پولیس کا. اور دوسری طرف پر آرمی جو ہے تقریباً 15,000 آرمی وہ تو سی پیک کے لیے لگی ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے سی پیک میں وہ چینی جو سی پیک پر کام کریں گے ان کی حفاظت کے لیے. اور تیسری بات کہ نیوی میں بھی ایک 88 ٹاسک فورس بنایا ہوا ہے, اور وہ ٹاسک فورس جو ہے وہ سی لینڈ کی حفاظت کرے گا اور گوادر میں جو چینی کام کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ معبود
ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ جو ان سیکیورٹی انتظامات جس کی ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہے اس کے باوجود چین کی طرف سے بار بار اپنے شہریوں کے لیے وارننگ جو ہے یہ سامنے کیوں آ رہی ہے, اور ساتھ ایک چین کی جو ویب سائٹ ہے سفارت خانے کی ویب سائٹ اس پہ خاص طور پر جو دہشت گرد تنظیم ہے ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ اس کا نام لیا گیا ہے کہ اس سے چینی شہریوں کو خطرہ ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا پلیز.
تو یقینی طور پر میں نے جس طرح بتایا کہ پہلے بھی ان کے سفیر کو دھمکی ملی تھی اور انہوں نے اس تنظیم کو ہی مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ حملہ کر سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ اقدامات بھی لیے گئے. لیکن جو اس تنظیم تو ظاہر ہے کہ جس طرح اس میں یوغر کچھ شامل ہیں, اس کے علاوہ کچھ یہ ازبکستان والے اس میں شامل ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ یہ جو آئی ایس کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ان کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے. لیکن انہوں نے اس قسم کی کوئی بڑی کاروائی نہیں کی ہے جس طریقے سے آرار یا داعش یا ٹی ٹی پی وغیرہ وہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, چاہیے خواہ وہ ازبکستان والے ہوں یا ایسٹ ترکمانستان والے ہوں, تو وہ ایک کنفلکٹ فری انوائرمنٹ چاہتے ہیں, کیونکہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ وہ جس ڈیولپمنٹ کام کے بھی آتے ہیں اگر اس میں سیکیورٹی ڈائمیٹر زیادہ بڑھ جائے, خطرے بڑھ جائے اور پھر ان پر حملے ہوں, تو ظاہر ہے کام کی رفتار سست ہو سکتی ہے. دوسری طور پر ایک سیکیورٹی پر زیادہ بوجھ پڑے گا, اور جب بوجھ پڑے گا تو ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اہداف مقرر کیے ہیں, کیونکہ ایک طرف پر وہ تھوڑا سا اگر ایسا فن ان کی چینی سفیر سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ چیز جو آپ لاتے ہیں یہاں پر تو بڑے حالات خراب ہے پاکستان میں, یہ مارے جائیں تو آپ کیا کریں گے, تو اس نے کہا ہم مزید چینی لے آئیں گے, کہتے ہیں اگر وہ مارے جائیں تو ہم مزید چینی لے آئیں گے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک سکسیس سٹوری بنانا ہے اس سی پیک کو, اور پاکستان میں چین کے اسپیشلی جو بزنس مین تھے ان کے مدربط اور ان کو مانیٹر کرنا اس کے لیے کوئی مضبوط نظام زیادہ نہیں ہے, اور تو وہ زیادہ مطلب ایک سیوٹ سچویشن ہوتی ہے, اور جہاں تک سی پیک والے ہیں تو ان کے لیے مضبوط سچویشن ہے. اور تیسری بات میں ایک یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں چین کے خدشات ہیں اور وہ خدشات پاکستان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, اور پاکستان وہ قدم بھی انہوں نے اس پر کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات بھی اٹھاتے ہیں. لیکن بلوچستان میں ایک اور مسئلہ ہے, اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے, اور وہ بی لیب وغیرہ کا ہے, وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ ہمارے بلڈ کو سک کرنے کے لیے یہ چینی جا رہے ہیں اور یہ یہاں پر جو بلوچستان کی دولت ہے وہ لوٹ کر لے جائیں گے. تو یہ اس پر مطلب ہے کہ جو انہوں نے حملے کیے ہیں
ان میں آپ کا کہنا ہے کہ وہ بھی ملوث ہے. جی بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے ساتھ رہیے پلیز, ٹائم کافی کم ہے. ہمیں بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور ایک اچھی خبر جو آج پاکستان سے آئی ہے اس پہ بھی آپ لوگوں کی میں انالیسز لینا چاہوں گی. خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی حراست میں موجود مبینہ بھارتی جاسوس جو ہے کلبھوشن یادیو ان سے ان کی بیوی اور والدہ کو 25 دسمبر کو ملاقات کی اجازت دی ہے. پہلے ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید, اور آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو اقدام ہے اس کو کس طرح بھارت میں دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے بھارت میں جو فی الحال تو یہاں پہ گجرات میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس لیے میڈیا میں زیادہ اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو پا رہی, لیکن اخباروں نے اسے جو ہے اچھے ڈھنگ سے اس کو شائع کیا ہے اس نیوز کو, اور اسے جلدی ہندوستان کے اندر میں جو گورنمنٹ کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو تعریف ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ یہ مسئلہ کافی پہلے سے لٹکا ہوا تھا, اس مسئلے کو لے کر کے ہندوستان کی سرکار جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی گئی تھی جہاں پہ بہت ساری بات چیت بھی ہوئی, اور 13 دسمبر کو اس کے اوپر اگلی کاروائی بھی ہونے والی تھی, لیکن اس کے پہلے ہی پاکستان کی طرف سے جو ایکسس دیا گیا ہے और इसमें भी एक बीच में एक प्रॉब्लम आई थी, टीचिंग प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है सिक्योरिटी का जो लोग इसके परिवार से इसके फैमिली मेंबर्स जो जाने वाले थे उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है सरकार पाकिस्तान की सरकार नहीं ले रही थी, लेकिन फिर आज जो फैसला आया है पाकिस्तान की तरफ से तो ये जो आया है तो ये अब ये मसला जो है बिल्कुल साफ हो गया कि ये लोग जाएंगे, पाकिस्तान की सरकार इनकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होगी और वो मिलेंगे। तो ये इस माहौल में देखा जा रहा है कि ये बाकायदा जो है कि कुलभूषण के मसले थे, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे विरोध के बावजूद हिंदुस्तान की सरकार ने डिप्लोमेटिकली इस मसले को जो है वो अच्छे ढंग से इन्होंने ये पेश किया। तो ये हिंदुस्तान के मीडिया और हिंदुस्तान में जो इस डिसीजन को लेकर के जो लबुल भाव है उसका वो यही है।
ओके, जिस तरह आप कह रहे हैं डॉक्टर मुनीश कुमार साहब के एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्या ये मजीद बढ़ सकती है बात, और इस जिस तरह मुजाकिरात जो हैं दोनों कंट्रीज के माबेन पेंडिंग है उस हवाले से कोई पेशरफ्त की तवक्कु की जा रखी जा सकती है?
ये मुझे ये नहीं लगता कि ये मसला बिल्कुल ही सेपरेट है, ये बिल्कुल ही अलग है। ये मसला जो है ये मसला इसलिए भी उठा था क्योंकि मीडिया में बहुत सारे तरफ से ये कहा गया कि भाई उसे वो पाकिस्तान में पकड़ा गया, वो जासूस है, हिंदुस्तान ने एक अलग पोजीशन ले लिया कि वो जासूस नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नहीं, एक सर्विंग आर्मी ऑफिशियल है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से इस बात को डिनाई किया गया। सच्चाई भी यही थी कि वो पहले ही रिटायर हो चुका था। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी इस चीज को लेकर के हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के मीडिया में भी उस पर बातचीत हो रही थी, हिंदुस्तान में भी इसको लगातार दिखाया जा रहा था। तो हिंदुस्तान में बाकायदा ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया कि भाई कि किसी तरीके से उनको बचाना है। तो उधर पाकिस्तान में उसे फांसी की सजा दे दी गई, तो उसके फांसी को रुकवाना है। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी तो ये काफी एक टग ऑफ वॉर चल रहा था। लेकिन मैं इसको कह सकता हूँ कि लेकिन ये एक बिल्कुल ही आइसोलेटेड मसला है, एक पर्सनलाइज प्रॉब्लम है कुलभूषण को लेकर के। इस मुद्दे के बेस पे, इस कुलभूषण के केस के आधार पे कोई बातचीत हो हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और या कोई मसला जो आप जिसकी चर्चा कर रही है कोई बायलेटरल टॉक्स वगैरह हो, ये मुझे नहीं लगता है कि ये फार फेच्ड है थोड़ा सा।
ओके, ब्रिगेडियर साहब आपसे ये मैं जानना चाहूंगी, हमें ये मालूम है कि कुलभूषण जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह हैं जनरल बाजवा, उनसे रहम की अपील भी कर चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब ये केस जो है अभी तक पेंडिंग है, कोई जवाब जो है मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सामने नहीं आया है। क्या इम्कानात आप देखते हैं इस केस के?
तो जहाँ तक कुलभूषण का ताल्लुक है तो उस पर जो चार्जेस है और जो पहले उसमें कोर्ट मार्शल करके उसको सजा जो दी गई है वो तो उन चार्जेस पर पाकिस्तानियों को भी दी जाती है और वो जासूस हो तो उसको भी दी जाती है। लेकिन जहाँ तक इस पर अभी अपन दरामद का ताल्लुक है तो इस तरह मनीष कुमार साहब ने कहा कि वाकई ये डिप्लोमेसी के नजर हो गया है, और इंडिया ने एक डिप्लोमेसी की भी है कि एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए और दूसरी तरफ पर इसको इंसानी मसला करार दिया। और मेरे ख्याल में इसी के साथ तो अगर इनके बीवी और इसके माँ को इजाजत दी जा रही है तो फिर तो एक ह्यूमैनिटेरियन मूव है जो कि पाकिस्तान ने शायद इस सिलसिले में उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात भी फिर जो नुकसा छीने वो उठाते हैं कि पाकिस्तान में तो अपने बहुत सारे लोग जो इस किस्म के क्राइम्स में टेररिज्म में या दूसरे चीजों में बंद है उनको उनके अपने माँ बाप से या उनके बीवियों से तो मुलाकात नहीं कराई जाती। तो ये स्पेशल केस जब इतना उसने जुर्म किया है उसको क्यों नहीं इजाजत दी जा रही है, जो सख्तगीर जो मौकफ वाले लोग हैं वो ये भी कहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का ताल्लुक है तो वो तो काफी सरमोहरी में है, और ये इंडिया ने कहा है कि हम किसी हद तक भी जाएंगे उसको बचाने के लिए, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हम तो उसको वही करार वाकई सजा देंगे जो कि एक सबोताज जो करता हो या दहशतगर्दी जो फैलाता हो, तो और उसको सजा भी वही हुई है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर अपील है सदर के पास ये उसको हक हासिल है। अलबत्ता बात ये है कि मेरे ख्याल में कि इस किस्म के इश्यूज पर और मेरे ख्याल में जितना मीडिया कम वो 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 उसको उछाले या जो वो पोजीशन दोनों तरफ से आ जाए कि बिल्कुल हम उसको लटकाएंगे और दूसरा कहता है कि हम उसको बचाएंगे, तो ये भी एक किस्म के मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन है,
बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड इस मसले को बना सकती है।
उसका ताल्लुक है वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात का, तो मौजूदा सूरत हाल में तो नो कलभूषण सिंह यादव जो है वो छूट सकता है, और अगर सजा उसको होगी तो मेरे ख्याल में उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ भी देख रहे हैं और साथ पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि कुछ लोगों के तौर पर इंडिया फिर क्या करेगा। अगर
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपका भी, डॉक्टर मुनीश कुमार साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए। सामीन नेक्स्ट वीक तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।